लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कनाडा में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा पर हमारी अंतिम रिपोर्ट। सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस कनाडा में अपनी एक साप्ताहिक प्रेरितिक यात्रा पूरी कर शनिवार को रोम लौटे। इटली से बाहर संत पापा फ्रांसिस की यह 37वीं प्रेरितिक यात्रा थी, जिसे स्वयं संत पापा ने प्रायश्चित तीर्थ यात्रा का नाम दिया है। वैटिकन ने सूचित किया कि प्रेरितिक यात्रा समाप्त कर रोम पहुंचते ही अपनी नेक परंपरा का पालन करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने रोम के मरिया मज्जोरे महागिरजाघर में सालुस पॉपोली रोमानी मां मरियम की प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक होकर श्रद्धार्पण किया। मरियम को समर्पित मरिया मज्जोरे महागिरजाघर में प्रार्थनाएं अर्पित करने के उपरांत संत पापा फ्रांसिस वैटिकन लौट आए हैं। कनाडा के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने एक वक्तव्य जारी कर संत पापा फ्रांसिस की ऐतिहासिक यात्रा के लिए प्रभु ईश्वर के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि वे इस भूमि के मूल निवासियों के प्रति अपने सामीप्य के प्रदर्शन तथा कनाडा में अपनी उपस्थिति से अपने वादा को पूरा करने आए थे, जिसके लिए हम आभारी हैं। उन्होंने लिखा, कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष संत पापा फ्रांसिस की यह प्रेरितिक यात्रा उपचार और सुलह के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर का प्रतिनिधित्व करती है। संत पापा द्वारा प्रदर्शित पुनर्मिलन के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए तथा सत्य की खोज में शामिल होने के लिए हम कनाडा के धर्माध्यक्ष कृत संकल्प हैं। आर्कटिक शहर इकालुइत के हवाई अड्डे पर शुक्रवार को कनाडा की गवर्नर जनरल मेरी साइमन तथा वरिष्ठ प्रशासनिक और कलीसियाई अधिकारियों सहित इनुइत जनजाति के प्रतिनिधिमंडल ने संत पापा फ्रांसिस से विदा ली। पारंपरिक देशज इनुइत ढोल नगाड़ों की लय पर नृत्य की अंतिम प्रदर्शनी के बाद संत पापा फ्रांसिस रोम तक 7 घंटे की उड़ान के लिए अपने विमान पर सवार हुए। चौबीस जुलाई से 30 जुलाई तक जारी रही इस यात्रा के दौरान कई मौकों पर संत पापा फ्रांसिस ने कनाडा की विनाशकारी आवासीय स्कूल प्रणाली में मिशनरियों के सहयोग के लिए क्षमा याचना की है। गौरतलब है कि सन 1870 से 1996 तक कनाडा में 1.5 लाख से अधिक देशज बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया था और सरकार द्वारा वित्त पोषित और मिशनरियों द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में लाया गया था। कई को भूखा रखा गया था, मूल भाषा बोलने के लिए पीटा गया था और कभी कभी उनका यौन शोषण भी किया गया था। इसे कनाडा के सत्य और सुलह आयोग ने सांस्कृतिक नरसंहार निरूपित किया है तथा कनाडा सरकार और कनाडा की कलीसिया द्वारा क्षमा याचना और क्षतिपूर्ति की मांग की है। इस प्रायश्चित तीर्थ यात्रा का अंतिम दिन शुक्रवार को संत पापा ने कनाडा के उत्तरी नूनावत क्षेत्र की राजधानी इकालुइत शहर का दौरा कर संपन्न किया, जहां इनुइत जनजाति के युवाओं और बुजुर्गों की एक सभा को संबोधित करने से पहले आवासीय स्कूल के उत्तरजीवियों के एक समूह के साथ व्यक्तिगत मुलाकात की। 7,500 की आबादी वाले इकालुइत शहर में संत पापा फ्रांसिस एक प्राथमिक विद्यालय में पूर्व छात्रों से मिले, जिन्होंने सरकारी वित्त पोषित बोर्डिंग स्कूलों में सही गई पीड़ा और अपने परिवारों से अलग होने की व्यथा के दुखद अनुभवों से संत पापा को अवगत कराया। 19वीं शताब्दी में आरंभ उक्त क्रूर नीति का लक्ष्य देशज बच्चों को उनकी मूल संस्कृति से अलग कर कनाडा के ख्रिस्तीय समाज में एकीकृत करना था। इनुइत जनजाति के युवाओं और बुजुर्गों की एक सभा को प्राथमिक स्कूल के बाहर संबोधित कर संत पापा ने कहा, माता पिता और बच्चों को जोड़ने वाले बंधनों को तोड़ना, हमारे करीबी रिश्तों को नुकसान पहुंचाना, नन्हे मुन्नों को नुकसान पहुंचाना और बदनाम करना कितना बुरा है। उन्होंने आवासीय स्कूलों के उत्तरजीवियों को अपनी पीड़ा साझा करने के साहस के लिए धन्यवाद दिया, जिसे उन्होंने कुछ माहों पहले फर्स्ट नेशन के मेतिस और इनुइत जनजातियों के प्रतिनिधिमंडल की वैटिकन यात्रा के अवसर पर पहली बार सुना था। संत पापा ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आवासीय स्कूलों में कैथलिकों के सहयोग के लिए मुझे गहन खेद है जिन्होंने उन स्कूलों में बलात् सांस्कृतिक एकीकरण की नीतियों में योगदान दिया। कनाडा की 6 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा के दौरान संत पापा फ्रांसिस द्वारा कैथलिक कलीसिया की गलतियों के लिए मांगी गई माफी को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। आवासीय स्कूलों के कुछ एक उत्तरजीवियों ने इसका स्वागत किया है तथा कहा है कि संत पापा फ्रांसिस की पहल उनके उपचार और पुनर्मिलन में मददगार सिद्ध होगी, जबकि अन्यों का कहना है कि अतीत की गलतियों को ठीक करने और न्याय की स्थापना के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है। इनुइत जनजाति के लोगों ने अपनी मातृभूमि में संत पापा फ्रांसिस का हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने किलिक नामक अनुष्ठानिक दीप प्रज्वलित किया तथा मंत्रों के उच्चार से सर्वशक्तिमान ईश्वर की आशीष का आह्वान किया। संत पापा फ्रांसिस ने इस दीप के प्रतीकात्मक अर्थ पर टीका करते हुए कहा कि इसने अंधकार को दूर कर हम सब में सौहार्द्रता और गर्माहट को उत्पन्न किया है। उन्होंने कहा, उपचार और मेल मिलाप की यात्रा को एक साथ बढ़ाने की इच्छा के साथ हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जो सृष्टिकर्ता की मदद से जो कुछ हुआ उस पर प्रकाश डालने और अंधकारपूर्ण अतीत से आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सकता है।
संत पापा फ्रांसिस ने कनाडा के मूल वासी प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए अपनी प्रेरितिक यात्रा के सार एक साथ चलने की हृदय स्पर्शी मनोभावों को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं एक मित्र की भांति कनाडा आपसे मिलने, आपको देखने, सुनने और आपके जन जीवन से सीखते हुए आपकी प्रशंसा करने हेतु आया।
He venido como peregrino con mis limitadas posibilidades físicas para dar nuevos pasos adelante con ustedes y para ustedes।
अपनी शारीरिक अयोग्यताओं के बावजूद मैं एक तीर्थयात्री की भांति आपके साथ और आपके लिए कुछ कदम लेने हेतु आया। मैंने ऐसा किया जिससे सच्चाई छानबीन की प्रक्रिया आगे बढ़े और इसके द्वारा चंगाई और मेल मिलाप स्थापित किया जा सके, जो आने वाली पीढ़ियों में आशा के बीज बोएगा। उन्होंने कहा, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं अपनी इन चाहतों के साथ आया और अब मैं एक वृहद अनुभूति के साथ घर लौट रहा हूं। मैं अपने हृदय में अतुलनीय निधि को वहन करता हूं, जो व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप में मुझे स्पर्श किया है। आपके चेहरे, मुस्कान और आपके संदेश मेरे साथ हैं। प्राकृतिक सुंदरता की अविस्मरणीय कहानियां, संगीत, रंग और आपके मनोभावों ने गहरे रूप में मेरा स्पर्श किया है। मैं सचमुच में कह सकता हूं कि आपके बीच आना, आपके जीवन और अनुभवों से रूबरू होना मूल वासियों की जमीनी हकीकतों ने मुझे प्रभावित किया है, जिसे मैं अपने में संजोकर रखता हूं, जो सदैव मेरे जीवन के अंग रहेंगे।
Me atrevo a decir, si me lo permiten, que ahora en cierto sentido yo también me siento parte de vuestra familia y me siento honrado।
यदि आप मुझे इसकी अनुमति दें तो मैं यह कहने का साहस करूंगा कि मैंने अपने को आपके परिवार का एक अंग स्वरूप पाया और इसके लिए मैं अपने को सम्मानित अनुभव करता हूं। संत अन्ना के त्योहार को विभिन्न पीढ़ियों और मूलवासी परिवारों के संग मनाना मेरे हृदय में एक गहरे छाप की तरह अंकित रहेगा। दुनिया जिसे हम दुर्भाग्यवश व्यक्तिवाद से ग्रसित पाते, वही परिवार और समुदाय के रूप में आपकी विशुद्धता अपने में मूल्यवान है। युवाओं और बुजुर्गों के संग संबंध स्थापित करना और इसे पूरी सृष्टि के संग स्वास्थ्य और एकात्मक तरीके से बनाए रखना अपने में कितना महत्वपूर्ण है।
मैं एक तीर्थयात्री के रूप में कनाडा आपके साथ चलने के लिए और देशज लोगों के लिए आया हूं, ताकि सत्य की खोज में, उपचार और सुलह की प्रक्रियाओं में प्रगति हो सके, तथा इसलिए कि भ्रातृत्व भाव में जीवन यापन के इच्छुक कनाडा के मूल निवासियों और नागरिकों में आशा के बीज बोए जा सकें। कनाडा में अपनी एक साप्ताहिक यात्रा के समापन पर 30 जुलाई को इस ट्वीट संदेश के साथ संत पापा फ्रांसिस ने कनाडा में अपनी यात्रा के उद्देश्य को अभिव्यक्ति प्रदान की। कनाडा से अपनी रोम वापसी यात्रा से पूर्व उन्होंने कनाडा में उनके स्वागत के लिए प्रशंसा की अभिव्यक्ति हेतु देशज लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्होंने सुलह और उपचार के मार्ग में योगदान दिया है। शुक्रवार को केबेक के महाधर्माधीक्षी निवास में संत पापा फ्रांसिस के साक्षात्कार हेतु एकत्र देशज लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल से उन्होंने कहा, मैं अपने हृदय में उन सभी व्यक्तियों और लोगों का अतुलनीय खजाना संजोए हुए हूं जिन्होंने मुझ पर छाप छोड़ी है, जिनके चेहरों की मुस्कान और जिनके संदेश सदैव मेरे साथ रहेंगे, जिनकी अविस्मरणीय कहानियों और प्राकृतिक सौंदर्य, ध्वनियों, रंग और भावना ने मुझे गहराई से छुआ है। अपनी टीका में संत पापा फ्रांसिस ने कनाडा की प्रेरितिक यात्रा के शीर्षक साथ साथ चलें पर चिंतन किया। उन्होंने कहा, इस भूमि की विशालता हमें उपचार और सुलह के लंबे रास्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिसका हमें एक साथ मिलकर सामना करना होगा। शुक्रवार को कनाडा से प्रस्थान करने से पूर्व संत पापा ने कहा कि वे इस यात्रा से बहुत समृद्ध रोम लौट रहे हैं और विशेष रूप से इस भूमि की देशज वास्तविकताओं से गहनतम ढंग से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि अब एक निश्चित अर्थ में मैं भी अपने आप को आपके परिवार का हिस्सा समझता हूं और इसके लिए मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। संत पापा फ्रांसिस ने याद किया कि वे एक तीर्थयात्री के रूप में और एक मित्र के रूप में इस देश के मूल निवासियों से मिलने, उन्हें देखने, उनकी सुनने, उनसे सीखने और उनकी सराहना करने के लिए कनाडा आए थे। उन्होंने कहा, मैं एक भाई के रूप में आया हूं। स्थानीय कैथोलिक परिवार के सदस्यों द्वारा वर्षों के दौरान अच्छे और बुरे फल की खोज करने के लिए आया हूं। मैं तपस्या की भावना में आया हूं। आपके विरुद्ध दमनकारी और अन्यायपूर्ण नीतियों का समर्थन करने वाले कुछ कैथलिकों द्वारा आप पर किए अन्याय पर अपना हार्दिक दर्द व्यक्त करने के लिए मैं आया हूँ।
कनाडा में प्रेरित यात्रा के अंतिम पड़ाव पर संत पापा फ्रांसिस ने इनुइट के प्राथमिक स्कूल के प्रांगण में युवाओं एवं बुजुर्गों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें अपनी संस्कृति और अपनी सुंदर भाषा में काम करते हुए एक साथ आगे बढ़ने, हर दिन प्रकाश में आने और टीम के सदस्य बनने का निमंत्रण दिया ताकि वे अपने पूर्वजों द्वारा सुरक्षित रखे एवं हस्तांतरित किए गए सुसमाचार का आलिंगन कर सकें एवं यीशु ख्रिस्त के इनुक चेहरे को देख सकें। उन्हें संबोधित कर संत पापा ने कहा,
Saludo cordialmente a la señora gobernadora general y a todos ustedes.
मैं गवर्नर जनरल और आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। मैं यहाँ आकर खुश हूँ। आपके स्वागत के शब्दों, गीतों, नृत्य एवं संगीत के लिए धन्यवाद देता हूँ जिनका आनंद मैंने उठाया। आवासीय स्कूल के छात्रों का साक्ष्य सुनने के बाद संत पापा ने कहा, कुछ देर पहले मैंने आप में से कई लोगों का साक्ष्य सुना। यह मुझे सिर्फ आक्रोश एवं लज्जा महसूस कराता है। आज भी इस स्थान पर मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि मैं अत्यंत दुखी हूँ और क्षमा मांगना चाहता हूँ उस बुराई के लिए जिसको ख्रिस्तो ने इन स्कूलों में सांस्कृतिक अस्मिता और अधिकार की नीतियों में सहयोग देकर किया है। आवासीय स्कूल प्रणाली के आगमन से परिवार टूट गए और छोटे बच्चे अपने घरों से दूर ले जाए गए। संत पापा ने कहा कि माता पिता एवं बच्चों के बीच संबंध को तोड़ना कितना बुरा है। हमारे नजदीकी संबंधियों को क्षति पहुंचाना, छोटे लोगों को चोट एवं ठोकर देना। अपनी प्रेरित यात्रा के उद्देश्य की याद करते हुए उन्होंने कहा, हम यहाँ चंगाई एवं मेल मिलाप की यात्रा को एक साथ आगे बढ़ाने की इच्छा से आए हैं कि सृष्टिकर्ता की मदद से हम जो हुआ उसे देख सकें एवं उस अंधकार में अतीत से आगे बढ़ सकें। संत पापा ने अंधकार दूर करने के लिए प्रतिदिन अच्छाई के दीपक जलाने की सलाह दी। उन्होंने गौर किया कि मूलवासी लोगों एवं उनकी भूमि के बीच अच्छा संबंध है क्योंकि वे उसे प्यार करते हैं, उसका आदर करते, उसे संजो कर रखते, बढ़ाते एवं बुजुर्गों के प्रति सम्मान, वास्तविक बंधुत्व एवं पर्यावरण की देखभाल जैसे बुनियादी मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि यह भूमि हर व्यक्ति की तरह कमजोर है और उसकी देखभाल की जानी चाहिए। संत पापा ने इनुइट के युवाओं को अपनी भूमि के भविष्य एवं इतिहास के वर्तमान के रूप में संबोधित करते हुए कहा, अतीत में जीना काफी नहीं है, मिले उपहार को अर्जित करना जरूरी है। अतः बुजुर्गों की सलाह सुनते रहने से ना डरें, इतिहास के नए पन्नों को लिखने के लिए अपने अतीत का आलिंगन करें, उत्साही बने तथा लोगों के साथ शामिल होने के लिए सच्चाई एवं लोगों के सामने खड़े हों। संत पापा ने अपनी मदद का आश्वासन देते हुए कहा, आपके जीवन के दीपक को जलते रहने में मदद देने के लिए मैं भी एक बड़े भाई की तरह आपको 3 सलाहें देना चाहूंगा। संत पापा ने कहा, आप आगे बढ़ते रहें, आप उड़ने के लिए बनाए गए थे, सच्चाई के साहस का आलिंगन करने तथा न्याय की सुंदरता को अपनाने के लिए, अपने नैतिक स्वभाव को ऊंचा उठाने के लिए, दयालु बनने, दूसरों की मदद करने एवं संबंध स्थापित करने के लिए, आप जहाँ कहीं भी हैं शांति के बीज बोने और उसका प्रेम से देखभाल करने के लिए। किंतु संत पापा ने स्वीकार किया कि इस तरह जीना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। उन्हें एक ऐसी दुनिया में जीना होगा जो ठोकर, युद्ध, छल, अन्याय, पर्यावरण विनाश, जरूरतमंद लोगों के प्रति उदासीनता और आदर्श बनने वालों की ओर से निराशा। संत पापा ने युवाओं को प्रोत्साहन देते हुए कहा, भविष्य अभी भी आपके हाथों में है। ईश्वर जिन्होंने आपको जीवन दिया और आनंद प्रदान किया, वे भी आपको प्यार करते हैं तथा उन्होंने आपके लिए इस महान सुंदरता को उत्पन्न किया है। ईश्वर आप पर भरोसा नहीं खोते, वे आपकी क्षमता पर विश्वास करते हैं। अतः आशा कभी ना खोएं एवं संघर्ष करते रहें। युवाओं के लिए संत पापा की दूसरी सलाह है कि वे प्रकाश में आए। उन्होंने कहा, यदि आप उदास या निराश महसूस करते हैं तो उस कालिक या दीपक की याद करें। इसमें आपके लिए एक संदेश है, आप हर दिन प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए बने हैं। प्रकाश और अंधकार के बीच हर दिन संघर्ष चलता है, जो कहीं बाहर से नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के अंदर में होता है। प्रकाश के रास्ते पर चलने के लिए झूठ के अंधकार का साहस के साथ सामना करना जरूरी है। इसका अर्थ है अच्छी तरह जीने के लिए अच्छी आदतों को अपनाना। संत पापा ने कहा,
hermano, hermana, Jesús te acompaña, te desea iluminar el corazón.
प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु आपके निकट हैं और वे आपके हृदय को आलोकित करना चाहते हैं, ताकि आप प्रकाश में आ सकें। यदि आप ईश्वर को खुश करना चाहते हैं तो अच्छाई का चुनाव करें।
Por último, el tercer consejo, hacer equipo.
तीसरी सलाह के रूप में संत पापा ने हॉकी खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए सभी युवाओं को निमंत्रण दिया कि वे टीम के हिस्से बने, जो दल में काम करने के कारण जीत हासिल करते हैं। दल में काम करने का अर्थ है बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अकेले नहीं जा सकते, आपको एक साथ आगे बढ़ना होगा, धीरज से अभ्यास करना तथा कठिन खेल को खेलना होगा। अंत संत पापा ने युवाओं को प्रोत्साहन दिया कि वे इन सभी चीजों को अपनी संस्कृति एवं भाषा में करें। उन्होंने कहा,
Les deseo que escuchando a los ancianos y recurriendo a la riqueza de vuestras tradiciones,
यह मेरी आशा एवं प्रार्थना है कि आपके बुजुर्गों को सुनने के द्वारा तथा अपनी परंपरा की समृद्धि एवं आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के माध्यम से आप सुसमाचार का आलिंगन करेंगे जो आपके पूर्वजों से आया है, और इस तरह आप यीशु ख्रिस्त के इनुक चेहरे को देखेंगे। और अंत में आशीर्वाद देने के बाद संत पापा ने कनाडा की यात्रा के लिए अपना आभार प्रकट करते हुए कहा, आप सभी को धन्यवाद। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।